ओम शांति। भट्टी में आज हमारे बीच ज्ञान सूर्य शिव बाबा के मास्टर ज्ञान सूर्य सूरज भाई पधारे हैं। हम सब एक हाथ की ताली से सूरज भाई का बहुत दिल से स्वागत करते हैं। ऐसे तो आप करीब 50 साल से बाबा के ज्ञान में चलते हो और 45 साल से बाबा के इस बेहद यज्ञ में मधुवन में समर्पित होकर सेवाएं दे रहे हो। ऐसे तो आप सभी जानते हो, आपके वहां भी भट्टी कराने आए थे। आपके योग के प्रयोग बहुत ही प्रचलित है। आप मधुवन में रहते हो फिर भी कई ब्राह्मण भाई बहने आपसे कुछ न कुछ फोन से भी पूछते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भी, और आप उनको रास्ता बताते हो, योग का प्रयोग भी बताते हो और उसमें सफल भी होते हैं। स्पार्क में भी आपने बहुत ही मनसा के बारे में आपका योगदान दिया है। बाप दादा आते हैं तभी भी हम सब जानते हैं कि बाबा के आने से पहले बाप दादा से मिलन की स्पष्टता या महत्व, नए भी बैठे होते तो उनको बहुत अच्छी तरह से समझाते हो। वर्तमान समय ज्ञान सरोवर में भी आप निमित्त किचन डिपार्टमेंट संभालते हो, ऐसे तो निमित्त ही कहेंगे क्योंकि ज्यादा आपका सेवा का पार्ट भट्टी कराना, क्लास कराना, प्रवचन करना, भारत के विभिन्न स्थानों पर और विदेशों में भी आपने बाबा की सेवा के लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छी महत्वपूर्ण सेवाएं की है। तो आज हम आपसे भट्टी की विशेष टॉपिक जो आपको दी है पवित्रता की महत्व, तो वो सुनेंगे। और हम सब ऐसे खुद को बिल्कुल प्योर आत्मा है ऐसे अनुभूति में रहकर आज भट्टी का जैसे कहेंगे एक ही दिन अभी बाकी है तो ये छाप लगाकर जाएंगे। आपके क्लास में भी क्लास के साथ साथ या योग की कमेंट्री और पूर्व भूमिका, ये सब स्वमान अभ्यास, ये भी सब आप लिखत में भी मीडिया में या ज्ञानामृत में ऐसे आपका आता ही रहता है, वो पढ़ करके भी सबको बहुत मदद मिलती है। आज तो हम सन्मुख आपके बैठे हैं तो जरूर आपके वाइब्रेशंस के साथ साथ आपकी जो शक्ति है, आपकी जो नॉलेज है, उसका भी पूर्ण हम अनुभव करेंगे। तो मैं अभी भ्राता सूरज भाई को नम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे आगे आपके इस विषय के गहरी अनुभूति का जो क्लास है वो रखेंगे। सूरज भाई।
ओम शांति। अच्छी चल रही है भट्टी सबके? हमारे कब से संकल्प थे कि मधुवन में भट्टियां चलें। खाली रहता था ना, पहले टीचर्स बहनों का होता था, अब उनका भी नीचे गया तो खाली रहता था। तो इस पवित्र भूमि का सबको बहुत फायदा हो, तो एक दो ग्रुप आ चुके हैं, बहुत अच्छा है। सब चार्ज होकर जाते हैं यहाँ से। मुझे याद आ रहा था आते हुए, बाबा ने कभी यहाँ हमें कहा है, जिस दिन मधुबन व्यर्थ से मुक्त हो जाएगा, यह स्थान जादू की नगरी बन जाएगा। हजारों लोग देखने आते हैं रोज, इस धरती पर आते ही दिव्यता हो जाएगी, उन्हें समझ में नहीं आएगा क्या हो गया यहाँ आते ही। तो व्यर्थ को वैसे समाप्त करने से बहुत सुंदर है योग भट्टी चलना, जिसमें व्यर्थ भी समाप्त हो जाता है और अच्छे वाइब्रेशंस भी फैलते हैं। आप सब भाग्यवान हैं, नहीं तो सब भाई बहने यहाँ रहने के लिए तरसते ही रहते हैं कि शांतिवन में ही सब कुछ चलता रहता है, ज्ञान सरोवर में नयों के लिए बाकी मधुबन में आने का मौका ही नहीं मिलता, तो आप सबको ये अधिकार भी मिल गया है। संसार में दो शक्तियां ही सबसे बड़ी हैं चारों युगों में, एक पवित्रता का बल और दूसरा योग का बल। पवित्रता केवल एक धारणा नहीं, ये बहुत बड़ा बल भी है। और ये बल उसके लिए बल बन जाता है, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। पवित्र तो बहुत बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन कुछ के लिए पवित्रता बल बन गया है, कुछ के लिए ये धारणा रह गया है, कुछ के लिए ये संघर्ष है, कुछ के लिए ये आनंद है। पवित्रता बल उसके लिए होता है जो अपने मन को साधारण और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त करके स्वमान में स्थित हो जाते हैं। तो ये बल प्रकृति को पावन करने वाला होता है। मैं आपको इसके बारे में 5 प्रैक्टिकल बातें रखूंगा आपके सामने, जिनको सभी को करना है, क्योंकि पवित्रता की यात्रा बहुत लंबी यात्रा है, सूक्ष्म यात्रा है। इतनी लंबी है कि जो संपूर्ण पवित्र बन गए वो हैं अष्टरतन। उनकी संपूर्ण पवित्रता के लिए दूसरा शब्द है संपूर्ण निर्विकारी। निर्विकारी शब्द और सुंदर है पवित्रता के लिए। जब बहुत पवित्र बन गए, जिनका युद्ध समाप्त हो गया, वो हैं विजय रतन, बाकी 100। इतनी बड़ी सब्जेक्ट है ये हमारी। लोगों ने तो मान लिया था कि कलयुग में पवित्र बनना, संपूर्ण पवित्र बनना तो असंभव है, लेकिन बाबा ने इसको संभव किया। कैसे? क्या सिखाकर? राजयोग सिखाकर। बिना योग बल के पवित्रता का बल आता नहीं है। अब मुझे पहली बात याद आ रही है 82 की मुरली की, क्योंकि मैंने उन दिनों अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करने के लिए 1 साल का प्रोग्राम बनाया था। हर हफ्ते एक विशेष बात का अभ्यास करने का था, तो मुझे याद है बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही। तुम सोचते हो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है। मुझे ऐसा लगता था जैसे बाबा मेरे को कह रहा है इसी हॉल में। तुम सोचते हो मुझे संपूर्ण पवित्र बनना है, पर नहीं, तुम ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। पहली बार सुना था ध्यान से, शायद पहले बाबा ने कहा हो, पर अंदर गई ये बात, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बहुत अच्छा अभ्यास हुआ इस पर। अब मैं इसका कुछ विस्तार आपको कहता हूं। देखिए, हमारे संकल्पों में बहुत बड़ी शक्ति है। अगर कोई मान ले कि भाई गृहस्थ में रहते तो संपूर्ण पवित्रता संभव नहीं, कभी क्रोध आएगा, कभी अहम टकराएगा, कभी लड़ाई हो जाती है, इच्छाएं हो जाती हैं, प्रवृत्ति में रह के ये बात पूरी संभव नहीं, किसी हद तक जा सकते हम। अगर हम ये संकल्प रखते हैं तो वैसा ही होगा। बहुत अच्छी बात सभी अपने मन में समा लें, बहुत अच्छी, ध्यान से सुन लेंगे। जिस संकल्प को हम स्वीकार कर लेंगे वही हमारी स्थिति बन जाएगी, वही हमारा जीवन बन जाएगा। सुना सभी ने? जिस संकल्प को हम सच्चे मन से स्वीकार कर लेंगे वही हमारा जीवन बन जाएगा। इसलिए दो संकल्प सभी को स्वीकार करने हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ और मैं विजयी रतन हूँ। उसके विस्तार में हम चलेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, जैसे ही हम ये सोचते हैं तो क्या होता है, आत्मा से पवित्र किरणें निकलकर, सफेद किरणें हमारे पूरे ब्रेन में फैलती हैं। ब्रेन गुजराती में क्या कहते हैं, मगज, सारे मगज में फैलती हैं। ठीक है, मगज अच्छा, मगज एक खाने का भी होता है ड्राई फ्रूट, सारी ब्रेन में फैलती हैं और फिर देह में फैलती हैं। इससे अंग अंग शीतल होने लगता है। याद हो बाबा की बात, आपको मुरली में आ चुकी है, साकार मुरली में, जब तुम्हारे अंग अंग शीतल हो जाएं तो तुम कहां तक पहुंच गए, याद नहीं होगी आपको, तुम पहुंच गए त्रेता युग में, यानी पवित्रता की सतो स्थिति आ गई। अभी सतो प्रधान बाकी है, उसके बाद भी तो बहुत ऊंची स्थिति है। तो एक अभ्यास सभी करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं इससे पहले पवित्रता के बारे में थोड़ा इसका महत्व क्या है वो आपके सामने रख दूं। बहुत सूक्ष्म बात है, अपवित्रता के कारण ही जीवन में विघ्न आएंगे। विघ्न आ रहे हैं, अपनी प्योरिटी को ठीक कर लें, विघ्न नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छा अनुभव करना है सबको, पवित्रता विघ्नों को नष्ट करने वाली शक्ति है। दूसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, पवित्रता से प्रकृति पावन बनेगी। संसार में कोई वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानता कि ये जो प्रकृति दूषित हो गई है इसको ठीक कैसे किया जाए। हमारी पवित्रता ही प्रकृति को पावन करेगी, और जब प्रकृति पावन हो जाती है तो ये भारत भूमि को भरपूर कर देती है, ये धरती सोने हीरे से भरपूर हो जाएगी। प्योरिटी धन संपत्ति को आकर्षित करती है, जहां प्योरिटी है वहीं पीस एंड प्रोस्पेरिटी है, जो इंग्लिश जानते हैं, धन संपदा है वहां, समृद्धि है। तो पवित्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता इस समय है प्रकृति को। संसार हमें बदलना है, प्रकृति भी उसमें बदलनी है, इसलिए बाबा हमें कहते हैं तुम प्रकृति के मालिक हो, तुम्हारे पवित्र वाइब्रेशन से ही प्रकृति पावन बनती है, सतो प्रधान बनती है, इसलिए हम इसके मालिक हैं। इसलिए माताएं बहुत बैठी हैं, माताओं को एक काम करना है, मैं पहले भी सिखाया होगा बत्ती में और आप सबने सुना होगा क्लासेज में भी, भोजन बनाते हुए क्या अभ्यास करना है, मैं परम पवित्र आत्मा। कौन कौन करती हैं माताएं, वाह बहुत अच्छा है, तो खुशी की बात है, और बढ़ा देना। बिल्कुल आप विश्वास पूर्वक जान लें, आपने अभ्यास शुरू किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आपके नैनों से हाथों से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में भरने लगे, दोनों फायदे होंगे, आपके घर में पवित्र वाइब्रेशंस फैलेंगे, भोजन में समाएंगे। जो उसे खाएगा उसका चित्त शुद्ध होगा, उसके रोग समाप्त होंगे। पवित्रता सबसे बड़ी औषधि भी है। तो माताओं को जो नहीं कर रही, सबको करना है। भाइयों में से कोई भोजन बनाते हैं? खाते सब हैं? एक बनाते हैं, खाते सब हैं? खाते हैं ना। अब खाने से पहले 7 बार भोजन को दृष्टि देकर 7 बार मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो आपके नैनों से प्योर वाइब्रेशंस भोजन में चले जाएं, फिर आप खाना। देखो भोजन खाने की बहुत अच्छी विधि सब अपनाएंगे, माताएं भी भोजन खाते हुए ये करेंगी। भोजन को दृष्टि देके ये संकल्प करें, फिर प्रकृति को धन्यवाद दो, तुमने हमें ये सुंदर भोजन दिया, बहुत बहुत थैंक्स। तीसरा, इस भोजन को बाबा को अर्पित कर दो, फिर खाओ। लेकिन बाबा को पवित्र भोजन ही अर्पित किया जा सकता है। कल मुरली में आ गया था, बाबा जो परम सत्य है वो केवल सत्य को ही स्वीकार करता है, उसके लिए पवित्रता ही सबसे बड़ी सत्यता है। तो ये काम सबको करना है। इस भोजन को खाने से आपके घर का कल्याण होगा, क्रोध समाप्त होगा सबका, चित्त शांत होगा, विचार महान बनेंगे, बच्चों के चरित्र में वृद्धि होगी, बच्चे चरित्रवान बन जाएंगे। माताओं को अपने को बहुत जिम्मेदार समझते हुए ये काम करना है। तो एक अभ्यास हुआ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। प्रैक्टिकली क्या करेंगे सभी भाई बहने? सभी कुछ नियम बना दें भट्टी से, और सवेरे उठते ही 7 बार गुड फीलिंग सहित, गुड फीलिंग माना स्वीकार करते हुए, अपने को आत्मा देखो और 7 बार संकल्प करना, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। प्योरिटी बढ़ने लगेगी, आपके मन में चलने वाला युद्ध समाप्त हो जाएगा। पसंद है? भोजन का दूसरा अभ्यास। अब तीसरी चीज, भाई लोगों को कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों में जाके भोजन करना ही पड़ता है। आप बताएंगे नहीं बहनों को, नहीं तो वो कहेंगी क्यों खाया, लेकिन खाना तो पड़ेगा। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं जिनमें खाना ही पड़ता है, ये विधि आप अपनाना इमरजेंसी में। यही वो विधि है जिसको बाबा कहते हैं, तुम योग बल से संसार को पावन करते हो, क्या भोजन को पावन नहीं कर सकते? भोजन को पावन करना, वैसे भी आजकल जो भोजन आ रहा है बाजार से भी वो दूषित आ रहा है। संसार में सारी बीमारियां भोजन से बढ़ रही हैं, कुछ टावर से, टावर लगे हुए हैं ना मोबाइल के, टीवी के, और कुछ भोजन से। भोजन में ऐसी ऐसी चीजें डाली जा रही हैं, आम को ऐसे ऐसे साधनों से पकाया जा रहा है, उनमें बहुत अशुद्धि है, उससे बीमारियां होती हैं। इसलिए माताओं को सब्जी और भोजन गर्म पानी से धोना चाहिए, अच्छे गर्म पानी से, उसमें कुछ भी ऐसा वैसा चिपका रह गया हो वो नष्ट हो जाए, और बाकी जो अंदर चला जाता है। अब देखो, मान लो बैंगन की खेती पे छिड़काव किया, बैंगन के ऊपर भी पड़ा तो अंदर जाएगा या नहीं? अंदर समाएगा कुछ ना कुछ। तो आप उसे दृष्टि देते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये अभ्यास करेंगे, तो अंदर की उसकी सारी इम्प्योरिटी समाप्त हो जाएगी, और ये अभ्यास अपनी प्योरिटी को भी बहुत महान बनाएगा। तीसरी बात, मैं विजयी रतन हूँ। सोच के देखेंगे सभी, ये संसार का चक्र कितनी बार घूम चुका है? आज भी था, कितने बार घूमा है? अनंत बार, गिनती नहीं। उसमें से हम 10,000 ले लें, जिसकी गिनती नहीं उसमें से केवल 10,000 लेते हैं। अब सोच के देखो, 10,000 बार ये चक्र घूम गया है। हम यहाँ बैठे हैं कितनी बार? 10,000 बार। सोच के देखो, बापूनगर में अपने घर में कितनी बार रहे हैं आप? आपको कोई कहे दिल्ली घूम के आओ, आप गाइड लेंगे, भाई दिल्ली घुमा दो। दूसरी बार जाएंगे तो आप कहेंगे हमने तो देखी है, चलो फिर भी गाइड ले लिया। आजकल बसें चलती हैं, ये थ्री व्हीलर चलते हैं, सारी दिल्ली घुमाए, 5 बार घुमाए। अब आपको फिर कोई कहे कि घूम के आओ? नहीं, मान लो आप घूमने गए भी तो कैसा लगेगा? सब कुछ तो देखा हुआ है, कुतुब मीनार देखेंगे तो देखी हुई है, होगा ना ऐसे? रास्ते में भटकने की कोई संभावना नहीं रहेगी, हम तो यहाँ 10 बार आए हैं, हमें पता है। रास्ता भूल भी गए तो इस बस में बैठ के फिर पहुंच जाएंगे। सोचो, हम 10,000 बार माया को जीत चुके हैं। जीती है या नहीं? या कहते हैं हमने थोड़ा ही जीती थी, थोड़ो ने जीती थी? क्या कहेंगे भाई लोग? हमने ही जीती थी, हमने माया को 10,000 बार जीता है। अब भी जीत हमारी है। जीत के नशे के साथ आगे बढ़ेंगे तो विजयी रतन बन जाएंगे। ये सूक्ष्म सी बात है, जीत का नशा। इस माया को तो बार बार जीता है। दो पहलवान लड़ते हो, एक पहलवान बड़ा पावरफुल हो, दूसरे को बार बार हरा देता हो, 2-4 बार के बाद वो कैसे लड़ेगा? खेल की तरह, इसको तो अब हराया, अब गिराया। हमने भी माया को किया, गई माया। ये नशा ले लो आप तो सवेरे उठकर, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं विजयी रतन हूं। तीसरा भी स्वमान ले लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इससे विजय बनने की शक्ति जग जाएगी। कल पहले जो हमने माया को जीता था, वो विजय की शक्ति हमारे पास अभी भी है, वो काम नहीं कर रही है, सो गई है, वो इस संकल्प से जगेगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रतन हूं। ठीक है, पसंद है? अगर आप इस अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे तो नए नए अनुभव होंगे। बहुत कम पुरुषार्थी इस पे काम करते हैं, बहुत कम, शायद 1,000 में से 1-2। मैं विजयी रतन हूं, इसको बहुत अच्छी तरह आपको अपनी फीलिंग्स में लाना है। विजय मेरी ही है, माया चाहे कितनी भी प्रबल हो, लेकिन मैं माया से भी अधिक पावरफुल हूं, विजयी हूं। इस नशे को रोज सवेरे अपने को देना है। सवेरे के इस बात को मैं कहूंगा, सवेरे सभी अपने को चार्ज करेंगे। ये चार्जिंग है, जैसे मोबाइल को चार्ज करने का ध्यान रखते हैं ना, अपने को भी चार्ज करना है रोज। पसंद है माताओं को? एक और काम करना है सभी को, प्योरिटी को बहुत बढ़ाने के लिए। ये शरीर हमको प्रकृति से मिला है, प्रकृति ने 5,000 साल तक हमारी पालना की है ना, सब कुछ दिया है, देह भी दिया, खाना पीना हवा। देखो प्रकृति की हमें कितनी अच्छी देन है। अगर प्रकृति कह दे मैं तुम्हारी हवा 1 मिनट के लिए बंद कर देती हूँ, क्या होगा हमें? कोई भी यहाँ बचेगा नहीं। 1 मिनट तक जिंदा रहना लगभग किसी के बस का नहीं है, सब परम धाम पहुंच जाएंगे। और हमें पता भी नहीं कि प्रकृति ने इतनी अच्छी चीज जीने के लिए दी हुई है। हम श्वास ले रहे हैं आराम से, हमें उसका आभास भी नहीं है। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति को हम रिटर्न करेंगे। इसलिए रोज 10 मिनट सवेरे शाम कभी भी प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। मैं उसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग विधि आपके सामने रखूंगा। प्रकृति को बहुत अच्छे वाइब्रेशंस देने हैं, इससे क्या फायदा होगा? और एक तो हमारी प्योरिटी बढ़ेगी, लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा होगा, विनाश काल में प्रकृति का सहयोग मिलेगा। प्रकृति हमें अपना मालिक स्वीकार करेगी। जब लोगों को पानी पीने को भी नहीं मिलेगा, तब हमारी टंकियां फुल होंगी, हम दूसरों को पिलाते रहेंगे। जब अन्न किसी को नहीं मिलेगा, हमारे भंडार भरपूर होंगे। ये बहुत फायदा होगा। देंगे प्रकृति को वाइब्रेशंस? देंगे ना? पांचवी बात रखनी है, जो आज के वरदान में भी आ गया, जो प्योरिटी का ही एक बहुत सुंदर स्वरूप है, सब आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं। अपनों के लिए तो सभी शुभ भावना रखते हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी। संपूर्ण पवित्र आत्मा की ये पहचान है कि कोई उसका शत्रु नहीं, उसके मन में किसी के लिए भी घृणा भाव नहीं, सब उसके अपने हैं। ठीक है, ये पवित्र आत्मा का लक्षण है। एक और अभ्यास करेंगे, ये हम कमेंट्री से जब योग करेंगे तब भी करेंगे। मैं आत्मा, जैसे हमने चर्चा की, परम पवित्र हूँ, दो संकल्प और बहुत अच्छे हैं जो अपने अभ्यास में आप चालू रखेंगे। ये तीन अभ्यास, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक ही अभ्यास मनुष्य को सदा सुख नहीं देता, बोरियत होने लगती है। तो ये तीन अभ्यास आपके सामने हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, इसमें जोड़ेंगे मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। तीसरा अभ्यास है, बहुत पावरफुल है, मैं पवित्रता का सूर्य हूं। मैं आत्मा पवित्रता की सूर्य हूं। जैसे आत्मा सूरज की तरह चमक रही है, इधर बहुत तेज किरणें फैल रही हैं, तेजस्वी किरणें। इसे शरीरीपन के अनुभव में भी बहुत आनंद हो जाएगा, योग भी बहुत सुंदर हो जाएगा। योग बल के बिना कोई पवित्रता को अपना नहीं सकता। बाबा ने आकर हमें तीन चीजें याद दिलाई जिससे हम सब पवित्र होने लगे। पहली तो यही कि तुम आत्माएं पवित्र हो मूल रूप से। दूसरी क्या याद दिलाई? नहीं, याद दिलाया अभी कुछ, वो भी याद दिलाया, लेकिन और सोचो, और कुछ। आप सब जानते हैं सिंपल बात, बाबा ने याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्माएं हो। दो युग तक क्या थे हम सब? देवता थे ना, देवता माना संपूर्ण पवित्र, जिनके चेहरे भी चमकते रहेंगे। पीछे बाबा की मुरली में आया, तुम्हारे शरीर कंचन की तरह चमकेंगे वहां। बिल्कुल निरोग काया, पवित्र काया। हम दो युग तक देवता थे, वो देव संस्कार दो युग तक, थोड़े दिन नहीं, 2500 साल हमने देवत्व में बिताए हैं। तो देवताई सारे संस्कार हमारे अंदर हैं, गुण संस्कार प्योरिटी शक्तियां सब हमारे अंदर हैं। उनके ऊपर दूसरी चीजें आ गई हैं। अगर हम देवताई संस्कारों को प्रकट करना चाहते हैं, इमर्ज, तो हमें याद करना पड़ेगा अपना पहला जन्म। इसलिए बाबा ने कई साल से बहुत बार याद दिलाया, 5 स्वरूपों का अभ्यास करो। ये अभ्यास योग को भी बहुत आनंदित कर देता है, एकाग्रता को भी बढ़ा देता है, प्योरिटी को भी बढ़ा देता है। जो कुछ हमारे पास सतयुग में था सब इमर्ज हो जाएगा। इसलिए बाबा की तरह, ब्रह्मा बाबा की तरह अपने देव स्वरूप को याद किया करें। आपने सुना ही है बाबा को क्या नशा रहता था, वहां हॉल में, हॉल के वो चित्र फोटो रखा है ना, वो ट्रांसलाइट लक्ष्मी नारायण का, जब वो बन के आया था ना, 66 के आसपास आया वो बन के, तो बहुत सुंदर था, अभी तक भी वो अच्छा है। उसे देखते ही बाबा का मन आनंदित हो जाता था, मैं बस ये बना। दीदी सुनाया करती थी, दीदी मन मोहिनी, दो अनुभव और सुनो कि वो कभी कभी, दीदी सारा कार्य कराती थी ना एक का, तो दिन में कई बार बाबा के पास जाती थी पूछने कुछ, तो दीदी सुनाती थी, मैं अचानक गई तो देखा बाबा बच्चे की तरह कर रहा है, नहीं दो हाथ आगे, बच्चे जैसे चलते हैं ना। तो दीदी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बाबा ने कहा, बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं ये बूढ़ा शरीर छोड़कर जाकर मिचनू, मिचनू माना छोटा बच्चा, छोटा बच्चा श्री कृष्ण बनूंगा। तो वैसे ही बन गए, जैसे जैसे श्री कृष्ण के चित्रों में है ना, ये वो पीछे है, ऐसे बन रहे थे, बिल्कुल नशा। दादी जान की सुनाती रहती है क्लास में, वो बहुत अच्छी बात है, हम सब उसे जानते भी हैं। जो नीचे का हॉल है श्री हॉल, तब यहाँ मधुबन में पूरा साल सीजन नहीं होता था, ये सब जगह अंगूरों के बेल की थी, ये हॉल भी नहीं था, अंगूरों के बेले बहुत सुंदर, उसमें बाबा की झोपड़ी बहुत आकर्षक, उसमें बाबा बहुत बैठते थे, बहुत योग करते थे, वाइब्रेशंस गहन शांति के। तो दिन के 3 बजे थे, दादी जान की जा रही थी अपने कमरे से कहीं निकल के, तो देखा बाबा अकेला हॉल में डांस कर रहा है। तो पहले तो दादी ने सोचा कि डिस्टर्ब क्यों करूं बाबा को, करने दो डांस, फिर इनसे रहा नहीं गया तो खड़ी हो गई वहां देखने लगी। फिर बाबा ने इन्हें देख लिया तो कहा, बच्ची बाबा को नशा चढ़ा हुआ है, मैं क्या बनने वाला हूँ। भविष्य का नशा वर्तमान और भविष्य को एक कर देता है, चढ़ाएं जिसको जितना नशा चढ़े, एक हो जाएंगे बिल्कुल। शुरू में बाबा से श्री कृष्ण के साक्षात्कार क्यों होते थे, क्योंकि बाबा को नशा चढ़ गया था, आते ही जैसे ही शिव बाबा आए और उन्हें बताया तुम श्री कृष्ण थे, नशा चढ़ गया, तो श्री कृष्ण दिखने लगा उनमें। हमें भी जिस चीज का नशा चढ़ जाएगा, आने वाले समय में हमसे भी वही दिखाई देगा संसार को। अब तो बाबा ने बंद किया हुआ है ना दिव्य दृष्टि की चाबी को, रख दिए थोड़े दिन के लिए, फिर बाबा इसको लगाएगा। और जिस दिन बाबा ने चाबी ताले में लग जाती है ना, जिस दिन इसको यूज करना शुरू कर दिया, साक्षात्कार की धूम मचेगी। और वो उनके द्वारा होंगे, मुरलियों में आप सुनते हैं जो योग युक्त होंगे, एक होंगे साक्षात्कार करने वाले और दूसरे होंगे कराने वाले। आप करेंगे कराएंगे? कोई सोचते होंगे दोनों काम करेंगे, पीछे की माताएं करेंगी या कराएंगी। साक्षात्कार से बहुत ज्यादा आनंद योग युक्त स्थिति में होगा, पर मान लो किसी ने अभ्यास कर लिया मैं ये देवी हूँ। आपके गुजरात में बहुत देवियां हैं ना, आपके बापू नगर में जो भी देवी हो, खोडियार है, कौन सी है, मेलडी माता, एक मेलडी माता भी है ना, बकरी उसकी सवारी है, हमारे आबू रोड में भी उसका मंदिर है, चिकोत्तर माँ, ठीक है। तो मान लो किसी ने अभ्यास कर लिया मैं ही चिकोत्तर माँ हूँ, तो क्या होगा, भक्तों को आपसे वही माँ दिखाई देगी। जिसने जो अभ्यास कर लिया, संकल्प करते ही वो स्वरूप बन जाएगा, ऐसा समय आ रहा है। इसमें अब लंबा समय नहीं है, 5 साल के अंदर ये खेल शुरू हो जाना चाहिए। धीरे धीरे होगा, फिर बहुत बढ़ेगा। तो हम सभी अपने देव स्वरूप को याद किया करें। 5 स्वरूप ही पवित्रता के हैं, इस देव देवी वो भी पवित्र है, ब्राह्मण भी, फरिश्ता भी। 5 स्वरूपों के अभ्यास को बहुत बढ़ाएंगे। पवित्र आत्माओं को क्रोध मुक्त होना चाहिए, क्रोध युक्त है, मुक्त। बहुत सारे भाई बहने क्रोध मुक्त हो गए हैं, मैं हाथ उठवाता हूँ, जहाँ तहाँ बहुत उठाते हैं। जो बहुत ज्यादा क्रोध मुक्त हो गए हैं वो हाथ उठाओ, बहुत ज्यादा, थोड़ा बचा उसकी कोई बात नहीं, उठाओ उठाओ, पूरा उठाओ, बहुत अच्छा। भाइयों के हाथ ज्यादा हैं, बहनों के कम, क्या बात है, ठीक है, बहुत अच्छा। जो क्रोध मुक्त होना चाहते हैं, चाहते हैं सभी, एक बहुत अच्छा संकल्प सवेरे करना। ये जो मैं कई संकल्प आपको बता रहा हूँ, ये 7-7 दिन आप एक एक कर सकते हैं, फिर दूसरा ले लो, तीसरा ले लो। वो संकल्प है, देखो, पहले अपने को आत्मा देखना, फिर संकल्प करना मैं विजयी रतन हूँ। मैं क्रोध मुक्त हूँ। मेरा चित्त शांत हो गया है, बिल्कुल फीलिंग से करना, हो गया है। ये नहीं करना मेरा क्रोध तो जाता ही नहीं, मुझे तो बहुत क्रोध आता है। अगर आप बार बार ये सोचेंगे तो जाएगा नहीं। मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं विजय रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत हो गया है। 7 बार बहुत अच्छा अनुभव होगा। और किसी को ज्यादा ही क्रोध आता हो, कोई कोई ऐसे भी महावीर है ना, एक माता मेरे पास आई ये समस्या लेकर कि भाई हम दोनों ही ज्ञान में हैं, लेकिन दोनों को ही बड़ा गुस्सा आता है, इतना आता है कि हम दोनों की लड़ाई होती है और पड़ोसी आके छुड़ाते हैं। कहा मैं इसलिए आई हूँ, जब पड़ोसी आके छुड़ाते हैं, वो साथ में ये भी कहते हैं, वो बेचारे बहुत प्यार से कहते हैं, अरे भाई तुम तो ओम शांति में जाते हो, लड़ा ना करो। कहा हमारा हाल बहुत बुरा हो जाता है। कहा सारा दिन न खाना अच्छा लगता न बात करना, जब वो ये कह देते हैं तुम तो ओम शांति में जाते हो, अब हम क्या करें, हमें बहुत लज्जा आती है, हमें इस क्रोध से मुक्त होना है। क्रोध का बीज कौन है? अहंकार। कोई भी अपने को कम नहीं समझता ना, भाई सोचेगा मैं बहुत बुद्धिमान, माता सोचेंगी बुद्धिमान तुम क्या, मैं तुमसे ज्यादा, तुम शेर तो मैं सवा शेर, लड़ाई हो जाती है। और बुद्धिमान कौन? जो अपने को बुद्धिमान न समझे। हर बुद्धिमान व्यक्ति सोचता है मैं राइट हूं, ये गड़बड़ है, ये लड़ाई का कारण है, क्रोध को जन्म देता है। हो सकता है हम राइट हों भी, लेकिन धैर्यता होनी ही चाहिए। तो कोशिश करनी है अहम को समाप्त करने की, और ये अभिमान समाप्त होता है स्वमान से। इसका दूसरा जो रूप है मैंपन, वो समाप्त होता है एक ही चीज से, जिसको सबको अभ्यास करना, भाई बहने सबको, जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु देन है। बहुत सुंदर विचार है ये, बाबा का दिया हुआ संकल्प है आप जानते हैं, पर ये आत्मा को निर्मल कर देता है। निर्मल प्योर आत्माएं निर्मल होनी चाहिए, निर्मल कर देता है। जो कुछ मेरे पास है वो सब प्रभु देन है, इसलिए अहम नहीं। हमें कर्मेंद्रियों को जीतना है, यही सब्जेक्ट सबसे बड़ा हो जाता है प्योरिटी में। कानों का रस, आंखों का, मुख का और जीभ का, चार रस विशेष, हाथों का भी है लेकिन चार विशेष, जिनको खान पान में आसक्ति है वो योगी नहीं बन सकते। जिनको व्यर्थ सुनने में रस है उनका पवित्रता का बल नष्ट होता रहता है। जो अपनी सुंदर चीज वाचा को, कितनी सुंदर चीज है मनुष्य के पास वाचा, जो इसे नष्ट करते हैं बहुत बोलने में, उनकी आंतरिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, उनके बोल में प्रभाव नहीं रहता। जो आंखों से ऐसा वैसा देखते हैं उनकी दृष्टि में दिव्यता नहीं रहती। इसलिए चिंतन करेंगे, मैंने जब किया ये अभ्यास तो मेरा ये चिंतन था कि जिन आंखों से हम भगवान को देखते हैं उन आंखों से न तो किसी का देह देखेंगे न किसी के अवगुण देखेंगे, दोनों ही इम्प्योरिटी है। अवगुण देखना भी ये पवित्रता है। जिन कानों से रोज भगवान की बातें सुनते हैं, सुनते हैं ना, मुरली सुनना कितना सुखदायक है ना। सबसे ज्यादा सुख बाबा की मुरली से मिलता है, यही तो वो बांसुरी है ना, जिसको सुन के गोपियां भाग आती थी। तो जिन कानों से भगवान के महावाक्य सुनते हैं उन कानों से हम व्यर्थ नहीं सुनेंगे। जो अपने को व्यर्थ सुनने से बचा सके वो भी बहुत महान बन जाते हैं। और तीसरा है जो मुख भगवान का ज्ञान अमृत देने के लिए मिला है उससे हम कटु वचन नहीं निकालेंगे। तो पवित्र आत्माओं के बोल सुखदाई, चाहे आप अपने परिवार में बोलें, फ्रेंड सर्किल में बोलें, काम जहां करते हैं अपने साथियों से बोलें, मधुर वाणी, पवित्र वाणी, आकाशवाणी बन जाती है, ये सब पवित्रता में आ जाता है। तो पवित्र आत्माओं का प्रकाश इस संसार में बहुत फैलता है। मुझे तो याद है कभी बाबा ने एक सुंदर संदेश में ये कहा था, तब से मुझे ये बात याद रहती है। दो संदेश की बातें सुना देता हूँ जिससे आपको प्योरिटी का महत्व बिल्कुल ख्यालों में रहे। बाबा ने कहा जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाओगे तो इस कलयुग के अंधकार में वैसे ही चमकोगे जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा आकाश में चमकता है। सबके मन को खींचता है ना, पूर्णिमा के चंद्रमा को देखने की इच्छा होती है, देखते ही रहें। मैंने एक दिन सोचा अभी नजदीक नजदीक कि मैं अंतर देखता हूं, एक दिन पहले का चंद्रमा और एक दिन बाद का 14, तो दोनों में ही वो आकर्षण नहीं था जो पूर्णिमा के चंद्रमा में था। हालांकि एक ही कला कम हुई थी लेकिन आकर्षण पूरा समाप्त हो गया था। तो मुझे बाबा की बात याद आ रही थी, जब तुम संपूर्ण पवित्र बन जाते हो तो पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह चमकते हो। एक और बहुत बड़ी बात आपको सुना देता हूँ। 75 राखी के त्योहार पर बाबा का संदेश था ये, आपने कहीं सुनी हो, मैं क्लासेज में सुनाता हूँ, बहुत पावरफुल बात है। राखी का दिन था क्योंकि, तो बाबा ने संदेश दिया, आगे चलकर विनाश काल में तुम्हारे सामने बीमार लोगों की भीड़ आएंगी, तुम एक साथ सबको दृष्टि देंगे और वो रोग मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये काम उनसे होगा जिनमें संपूर्ण पवित्रता होगी। संपूर्ण पवित्रता आंखों से निकलेगी किरणें और वो दूसरों को निरोग करेंगी। तो सभी ध्यान देंगे, बोल भी मर्यादित रहें, हमारा व्यवहार भी मर्यादित हो। बहुत सुंदर समय हमारे पास चल रहा है, इसमें कहीं कोई स्लिप न हो। मुझे ऐसा दिख रहा है, एक बात इशारे में आपको कहूंगा, बाबा ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूं केवल, थोड़ी बहुत गलत भी हो सकती है, कि कुछ समय में ब्राह्मणों में एक पतझड़ होने जा रही है। समझते हैं ना पतझड़, कई कच्ची आत्माएं निकल जाएंगी, क्योंकि कोई किला कितना भी पावरफुल हो उसमें 100 कच्ची ईंटें लगी हो तो किला पावरफुल नहीं माना जाता, और किला छोटा ही हो लेकिन सारी ईंटें बहुत मजबूत हो वो पावरफुल है। तो समय समय पर बाबा कच्ची आत्माओं को जरा विदाई देता रहता है। ये भी ड्रामा की प्लानिंग में एक प्लान है, इसलिए अपनी प्योरिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे आप। लास्ट बात सुना देता हूं, बाबा की बताई गई, आप में से कईयों ने सुनी होगी। अंत में दो काम इस सृष्टि पर बहुत होंगे। हाँ, पिछले साल रिवाइज अव्यक्त मुरली में आ चुकी है ये बात, शायद पिछले साल या इसी साल। पांचों विकारों का और प्रकृति के पांचों तत्वों का अंतिम आक्रमण होगा, पावरफुल अटैक। और जिसके अंदर जो विकार ज्यादा होगा वो उस विकार के वशीभूत होके हार खा लेगा। अब एक छोटी सी चीज देखो, जिसके बारे में मनुष्य को बहुत कम ख्याल रहता है, किसी के अंदर लोभ है। अब संसार में लोभ के वाइब्रेशंस बढ़ गए, विकारों के अटैक होने लगे, उसको भी लोभ हुआ, सोना खरीद के रख लूं। आएगा कोई सोना बेचने वाला, सोना होगा बनावटी, बताएगा सस्ता दे रहा हूं, 20 किलो है, 20 लाख में दे देता हूं, बस ले आया हूं कहीं से चोरी वोरी करके। आप उसके बहकावे में आ जाएंगे क्योंकि मन में क्या है, लोभ, उससे ले लेंगे। और जब पता चलेगा ये तो लोहा ही है अंदर में, ऐसा होता है लोभ मनुष्य को। ये हो रहा है बहुतों के साथ, 100 करोड़ रुपए ले गए लोग, असली सोना है, दिखा दिया था थोड़ा सा, चेक करा लो ये है, वो तो असली था जरा सा, बाकी सब था नकली, 100 करोड़ गए। धन का लोभ अब उचित नहीं, इच्छाएं जो लोभ है वो अब उचित नहीं। पवित्र आत्माएं माना तृप्त आत्माएं, संतुष्ट आत्माएं, नहीं तो इच्छाओं में हमारी शक्तियां चली जाती हैं। इसलिए आपने जो भारत के अच्छे अच्छे धर्म हैं, उनमें एक चीज सुनी होगी, इसको संस्कृत में नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह इकट्ठा न करना, कुछ भी चीज इकट्ठा न करना, क्योंकि जितना माल हम अपने पास ज्यादा रखेंगे हमारी बुद्धि पे दबाव रहेगा, हम योग का सुख नहीं ले पाएंगे और धन संपदा किसी को काम नहीं आएगी। विनाश काल ऐसा होगा, आ गया है तेजी से, अब कोई नहीं सोच रहा ना विनाश का, अब आएगा विनाश। बाबा ने कह दिया था जब कोई नहीं सोचेगा सब मस्त हो जाएंगे, विनाश उनोस कुछ नहीं होता है, ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे बोलती रहती हैं, तब विनाश का समय आएगा। लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, कई साल चलेगा, पीसेगा मनुष्यों को, तेल निकालेगा सबका। इसलिए पैसा काम नहीं आएगा, आपके पास जेब में 10,000 रुपए होंगे, एक गिलास पानी नहीं मिलेगा। आपके बैंक में बहुत सारा अकाउंट होगा लेकिन कोई बैंक वाला देगा नहीं, ये हाल होने वाला। काम क्या आएगा? श्रेष्ठ स्थिति, पवित्र आत्माओं को प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी। इसलिए अब एक ही बात कह के समाप्त करेंगे, फिर योग करते हैं। धन तो विनाशी है, सब जानते हैं, लेकिन धन को यदि पुण्य कर्मों में बदल दिया जाए तो पुण्य कर्म है अविनाशी। इसलिए जिसको अपने धन को अविनाशी बनाना हो, वो धन को पुण्य कर्मों में बदल दो। कौन सा है सबसे बड़ा पुण्य? आप जानते हैं, वैसे तो दुनिया में गरीबों को भोजन खिलाना, मदद करना, रोगियों की सेवा करना, वो पुण्य वो भी है, लेकिन जब भगवान काम कर रहा है तो उसको मदद करना सबसे बड़ा पुण्य वही हो जाता है। तो सभी अच्छी तरह चिंतन करेंगे और जो प्रैक्टिस मैंने आपको कही उनको चालू रखना, रोज सवेरे 10 मिनट सुंदर संकल्पों में व्यतीत करना, ये बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है। सवेरे के 10 मिनट मनुष्य के लिए वरदान होते हैं। पहला संकल्प जो हम करेंगे वैसा ही हमारा जीवन होगा। पहला उठते ही पहला संकल्प आपने कर लिया, मैं बहुत धनवान हूँ, तो क्या होगा? धन वृद्धि दिखाई देगी आपको कुछ दिनों में, कुछ बार करना है। पहला संकल्प आपने कर लिया, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, आपको लगेगा भाग्य के द्वार खुलने लगे। आपने पहला संकल्प कर लिया, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं, खुशी बढ़ने लगेगी। और आपने उठते ही सोच लिया, बहुत टेंशन है, इधर हाथ रख दिया, बहुत समस्याएं हैं, बाबा मदद करो, तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी, बाबा मदद नहीं करेगा, मदद तो हमें स्वयं को स्वयं करनी है। इसलिए ध्यान देंगे पहला संकल्प रोज का, और 10 मिनट और हैं हमारे पास, रोज सवेरे 10 मिनट जीवन का स्वर्ण काल है, स्वर्ण काल। जाके जो स्टूडेंट बैठे हैं वो बहुत अच्छा अभ्यास किया करें, मैं माताओं को बहुत सिखाता हूँ, बच्चों से कराओ, मैं बुद्धिमान हूँ, उठते ही 3 बार बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मिलेगी। मैं विघ्न विनाशक हूँ तो विघ्न नष्ट होंगे। सवेरे दिन में करने का महत्व है, लेकिन उठते ही करने का बहुत महत्व है। चलेंगे अब हम आधा घंटा पावरफुल योग, लाल लाइट कर दें भाई, किसी को नींद तो नहीं आ रही? आ रही हो तो खड़े हो जाएं एक बार, हैं? हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ एक बार, फिर ऐसा पावरफुल योग करें प्रकृति को योग का दान मिल जाए। वैसे किसी को नींद आ नहीं रही थी, मैंने ध्यान से देख लिया था। ठीक है, बैठिए। मैंने एक्सरसाइज करा ही नहीं, मैंने कहा दिन का समय है, खाना भी खाया है सबने, सवेरे कराना अच्छा होता है। अब मैं आपको संकल्प दूंगा, उसका सब अभ्यास करेंगे कुछ कुछ देर और बहुत आनंद लेंगे, ऐसे ही रोज किया करेंगे। सभी यहां देखें अपने को, मैं पवित्रता का सूर्य, बहुत तेजस्वी चमकती हुई आत्मा, मुझसे चारों रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। संकल्प करें, मेरा देह लोप हो गया, देह जैसे कि है ही नहीं, केवल मैं चमकती मणि, मैं पवित्रता का फरिश्ता, आत्मा प्रकाश के शरीर में, और मेरे अंग अंग से चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, सफेद किरणें। यहां से मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश में, फील करें अपने को ऊपर बादलों के बीच में, बाबा से पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, सफेद किरणों की जैसे बरसात हो रही है। प्रकृति का मालिक हूँ। मुझसे पवित्र किरणें चारों ओर फैल रही हैं। आकाश, वायु और अग्नि तीनों तत्व इन्हें ग्रहण कर रहे हैं। मैं ऊपर हूँ, आंखों के सामने है धरती का गोला, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर इस ग्लोब में समा रही है। यहीं से देखें दूर दूर तक फैला हुआ सागर, मेरे मस्तक से पवित्र किरणें निकलकर सागर के जल में समा रही है। मेरे सामने खड़े हैं नौ ग्रह देव रूप में, एक एक को दृष्टि दे रहे हैं। संकल्प कर दो तुम सभी मेरे गुड फ्रेंड हो, मेरे सहायक हो। एक एक को दृष्टि दे दें। अब यहाँ से मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में, जहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश है। फरिश्तों की दुनिया, सामने से आ रहे हैं बाप दादा, बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे हैं। साहब आप पास आ गए, मस्तक पर तिलक लगा रहे हैं। और वरदान दिया बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, विजयी रतन भव, विघ्न विनाशक भव, अब बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। बाबा के हाथ से पवित्र किरणें निकलकर मुझ में समाने लगी। अब इस सूक्ष्म शरीर को यहीं छोड़कर मैं निराकार आत्मा उठ चली अपने धाम। सामने है सर्वशक्तिवान, उनकी शक्तियों की किरणें सारे ब्रह्मलोक में फैल रही हैं। सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अब यहाँ से मैं आत्मा उतरते हूँ नीचे अपने देवलोक में। चारों ओर देखें स्वर्ग की दुनिया, देवलोक, बहुत बड़े बड़े समक चमकते सोने के महल, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य, हवाओं में भी सुगंध, बहुत बड़े बड़े घर, घरों के आंगन में खड़े हैं पुष्पक विमान, चारों ओर देवगण विचरण कर रहे हैं। यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण हूँ। यहाँ मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, सिर पर डबल ताज है, सिंहासन पर विराजमान हूँ, यहाँ से मैं अपने पूज्य स्वरूप में असभुजाधारी देवी या विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मंदिर में देखें अपने को, मैं मंदिर में हूँ। सामने खड़े हुए हजारों भक्त मेरे इस पूज्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। वे गुणगान कर रहे हैं, हे देवी तुम असुर संहारिणी हो, सुने अपनी महिमा, हे देव तुम विघ्न विनाशक हो, तुम सिद्धि दायिनी हो, विद्यापति हो, सबकी भाग्य विधाता हो, पाप नाशिनी हो, सबको सुख देने वाली हो, सबकी दुख हरता हो, कल्याणकारी हो, सिद्धिदाता हो, विघ्न विनाशक हो। अब हमारा वरदानी हाथ ऊपर उठता है और सभी भक्तों के सिर पर आ जाता है, भक्तों को वरदान दे रहे हैं। मैं फरिश्ता हूँ, कमल आसन पर विराजमान, मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, जो शक्तियां से बाबा में हैं, वो मुझ में भी हैं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। परम धाम में सर्वशक्तिवान, बुद्धि को स्थिर करें उन पर, महाज्योति ज्ञान सूर्य, बाबा का आह्वान कर दें, हे सर्वशक्तिवान, हे प्राणेश्वर, हे जगत नियंता, हम आपकी प्यारी संतान आपका आह्वान कर रही हैं, अपना धाम छोड़कर हमारी छत्र छाया बन जाओ। और सर्वशक्तिवान धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, अपनी शक्तियों की किरणें चार ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सिर के ऊपर, नीचे मैं शिव शक्ति, ऊपर सर्व शक्तिवान की छत्र छाया। सर्वशक्तिवान की छत्र छाया के नीचे संपूर्ण सुरक्षित, माया जीत, बहुत शक्तिशाली। ओम शांति।